अच्छा, एक सवाल तो ये है कि औरतों की कमीज़ या ड्रेस की लंबाई की हद तो हदीस में मिलती है, मगर ये नहीं मिलता कि घुटनों या उससे ऊंची होना गैर सालेहात की अलामत है, ये बात बच्चियों को कैसे समझाएं? ये एक सवाल है। लिबास के मुतालिक ये याद रखने की बात है कि शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं रखी कि ये जायज़ या नाजायज़, लेकिन ज़ाहिर है कि उसूल समझा दिए हैं। हमें ये देखना होगा कि नेक लोगों का तरीक़ा क्या है, सुलाहा का तरीक़ा क्या है, सालेहात का तरीक़ा क्या है। जैसे हम अगर ये कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुंगी पहनना और ऊपर चादर ओढ़ना साबित है, लेकिन ज़ाहिर है कि सिर्फ यही तरीक़ा नहीं है जो मसनून लिबास की तारीफ़ में आएगा, बल्कि उसूल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार यानी इज़ार पहनने को पसंद फरमाया, ये हदीस से साबित है। पहनना साबित है नहीं है, उसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है, इसलिए कि रिवायात ऐसे दर्जे की नहीं है। इसी तरह ऊपर चादर ओढ़ना भी साबित है, कमीज़ पहनना भी साबित है, कबा पहनना जुब्बे की तरह वो पहनना साबित है, मुख्तलिफ़ लिबास साबित हैं। तमाम में एक चीज़ हमें मिलती है कि वो तमाम लिबास ऐसा था कि ऊपर से एक बड़ा कपड़ा है, चाहे चादर है, कमीज़ है, जुब्बा है, ऊपर से एक कपड़ा है जो नीचे तक आ रहा है, ये साबित है। तो इससे मालूम हुआ कि मसनून लिबास का उसूल यह है कि एक तो नीचे कपड़ा होगा और ऊपर से आने वाला कपड़ा वो नीचे घुटनों के नीचे तक जाएगा मर्दों के लिए। औरतों में हम उस ज़माने के हालात को देखें, औरतों का लिबास कैसे होता था, और यही सालेहात का लिबास हर ज़माने में रहा है कि ऊपर से एक बड़ी चादर हो जो नीचे तक आ रही है, या बड़ा कमीज़ हो जो नीचे तक जा रहा हो, यही तरीक़ा है। ज़ाहिर है कि ये चीज़ हमें सराहतन हदीस में नहीं मिलेगी कि ये सालेहात का तरीक़ा है, तो हमें ये सिखाया गया कि अच्छा, सुलहा के तशब्बुह, मन तशब्बुह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है उनमें होता है, और ये चीज़ हमें देखनी है कि किन लोगों का क्या तरीक़ा राइज है। तो इसलिए ये चीज़ ज़ाहिर है उसूल से मालूम होती है, साफ साफ तमाम चीज़ें। हम उनसे ये कहें कि अच्छा, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, हर एक से मुनाजराना बात तो हम नहीं करते, लेकिन वैसे ही कि देखो, हर चीज़ तो हदीस में नहीं आती ना। कहीं पर आता है गाय का दूध पीने का जिक्र, मिसाल के तौर पर भैंस का दूध पीने का जिक्र, तो ज़ाहिर है कि हर चीज़, अंडे खाने का जिक्र, चावल खाने का जिक्र, तो वहाँ पर तो कोई नहीं पूछता कि हदीस में क्या है। बस मिसाल है, यानी किसी को, ज़ाहिर है कि ये मकसद नहीं है कि किसी को यानी इस तरीके से हम जवाब दें, लेकिन यानी ज़ाहिर है कि हमें तो शरीयत के उसूल समझाए जाते हैं अहादीस में, कुरान में, उन उसूलों की दुनिया बुनियाद पर फ़ैसला करना होता है। तो इसी तरह लिबास के भी उसूल हैं, उन उसूलों से हमें देखना होगा कि नेक लोगों का, सालेहीन का, सालेहात का तरीक़ा क्या है। वो बेहतर है, यानी कि वो फ़र्ज़ और वाजिब है, लेकिन वो बेहतर है। अगर सतर पूरी तरह पोशीदा है, छुपा हुआ है, तो फिर कोई हरज नहीं है कि कमीज़ अगर ऊंचा हो तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन बेहतर है कि नीचे हो। बस ये हम उनको ये सिखाएंगे कि ये ज़ाहिर है कि नेक लोगों में ये तरीक़ा हमेशा राइज रहा, ये बेहतर तरीक़ा है, लेकिन ये भी ना हो कि उनको जो चीज़ वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है उनको वाजिब और फ़र्ज़ की हद तक पहुँचा दें, ये भी नहीं होगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरा सवाल ये है कि अब होने ये लगा है कि हिफ्ज़, नाजरा वगैरह, नूरानी कायदे के ख़त्म पर भी बहुत अहतमाम से दावतें और सजावटों का अहतमाम होने लगा है, और बहुत सी चीज़ें फैलती जा रही हैं, जो न कर सकें तो उनके बच्चे वालिदैन से नाराज़गी का इजहार करने लगते हैं, इस बारे में क्या किया जाए? ये बहुत मुश्किल चीज़ है। थोड़ा सा हालात को हम देखें तो जिन हालात में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, और एक तो माहौल हमारा इन मुल्कों में, फिर हमारे मुल्कों में भी कोई कम नहीं है। होता यह है कि इनका क्रिसमस आता है, इनका हेलोवीन आता है, उनका थैंक्सगिविंग आता है, उनका फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं, और हम लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं आता। ठीक है, हमें इसलिए कि हमें सिर्फ दो ईदें दी गई हैं। अब बच्चे ये देखते हैं कि अच्छा, इन लोगों के ये पार्टी, वो पार्टी, वो पार्टी, हमारे मुसलमानों में भी सालगिरह मनाते हैं, और पता नहीं फिर ये मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, क्या क्या मनाते हैं, हम लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ें मना हैं ज़ाहिर है वो तो हम नहीं मनाते, लेकिन जो चीज़ें मना नहीं हैं बल्कि जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ है कि कायदा ख़त्म हुआ है और कुरान के इतने पारे हो गए हैं, ये हुआ है, कोई दीनी निस्बत है, तो दीनी निस्बत के लिहाज से अगर खुशी मना ली जाए तो उसमें फ़ी नफ़्सी ही देखें तो कोई हरज नहीं है, बज़ात ख़ुद कोई हरज नहीं है, लेकिन उसमें इसराफ़ और फजूल ख़र्ची उससे भी बचना चाहिए, ये भी है। अब अगर बच्चे खुशी से इसके लिए तैयार हैं कि नहीं ठीक है देखो हमें नहीं करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ भी ना करें, ज़रूरत ही नहीं है, इससे कि ये चीज़ें साबित नहीं हैं। हाँ कोई बड़ा वाक़या पेश आया, कुरान ख़त्म हुआ है, ऐसी कोई चीज़ है, बड़ी चीज़ है, फिर तो ठीक है, लेकिन बच्चों को ऐसी चीज़ों का शौक़ होता है, गैर दीनी चीज़ों में वो खुशी मनाने की उनकी ख्वाहिश होती है, हम कहेंगे नहीं गैर दीनी चीज़ों में तो नहीं करेंगे, अच्छा चलो दीनी चीज़ है ना कि अच्छा कायदा ख़त्म हो गया, ये हो गया, ये हो गया, छोटी मोटी दावत, छोटी मोटी कोई इस तरह की कोई चीज़ कर लें जिससे बच्चों का भी दिल रहे कि हाँ एक दीनी चीज़ के लिहाज से हमने खुशी मनाई है और उनको उसकी अहमियत पैदा हो, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ ज़्यादा इसराफ़ वग़ैरह और फजूलियात में ना पड़ें। इसमें जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब से हम थोड़ा पीछे चले जाएं, हमारे अकाबिर मशायख के यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं, लेकिन मैं सिर्फ हालात के लिहाज से कि यानी उनके यहाँ भी नाजायज़ नहीं समझा जाता था, बुरा नहीं समझा जाता था कभी कायदे के ख़त्म की भी या कभी नाजरा के ख़त्म की भी, यानी दावत करना उनके ज़माने में होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा तकल्लुफात नहीं होते थे। तो हम भी कोशिश करें कि या तो यानी इंसान ना करे तब भी कोई हरज नहीं, ना करे, और अगर करना है तो कम तकल्लुफात के साथ लेकिन कर लें कि चलो ठीक है आखिर दीन ही की निस्बत से दावत हो रही है, कोई गलत चीज़ के सिलसिले में दावत नहीं हो रही है, कोई दुनियावी चीज़ के सिलसिले में दावत नहीं हो रही है, तो दरमियान की सूरत इख्तियार कर लें, बहुत शिद्दत इसमें इख्तियार न करें तो शायद ये ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा एक और सवाल यह है कि तंगी की वजह से किसी पर बहुत सी मुश्किलात, बहुत सारे झूठे इल्ज़ामात और गलत सोच फितनों की वजह से जो इंसान के लिए अपने घरों में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस दुनिया से जाने की तमन्ना करना मुझे इन दुनियावी परेशानियों से बचाए हराम है? यानी हासिल यह है कि दुनियावी मुश्किलात और परेशानियों की वजह से मौत की तमन्ना करना, हदीस में इसकी ममानात आई है, हराम का दर्जा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मनाया है, इसलिए कि इंसान ये नहीं जानता, असल के लिहाज से इंसान को ये नहीं पता कि ये दुनिया में इंसान को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं तो मरने के बाद राहत मिलेगी या मुश्किलात ही पेश आने वाली हैं, मेरे आमाल किस काबिल हैं इंसान को नहीं पता है, अल्लाह के यहाँ इसके आमाल की मकबूलियत है यानी इंसान को नहीं पता है, दुनिया में जो मुश्किलात आ रही हैं इसका मतलब ये है कि इंसान ये सोचे कि अल्लाह ताला मुझे कुछ अच्छी चीज़ देना चाह रहे हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी कोई अच्छाई देना चाह रहे हैं, बाज़ों के लिए दुनिया आखिरत ही होती है, जन्नत ही होती है, दुनिया में उनको मौका ही नहीं मिलता, मुश्किलात 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 उसी में मौत आ जाती है, फिर आखिरत के मराहिल उनके लिए होते हैं, बाज़ों के लिए दुनिया में भी राहत होती है और आखिरत में तो है ही है। तो जितनी दुनिया में मुश्किलात हैं, जैसे कोई शख्स इसको सर्जरी करानी पड़े, वो ये सोचे कि सर्जरी कराने में अच्छा मेरे खाल को काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और मुझे तकलीफ़ होगी, तो इसकी बजाय मुझे कत्ल ही कर दें, मार ही डालें, ये क्या पता कि मरने के बाद वो राहत में होगा या तकलीफ़ में, सर्जरी की वजह से जो तकलीफ़ होगी बहरहाल उसके बाद तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेहत आफियत मिल जाए, ये तो तिब्बी लिहाज से बता रहा हूँ, वरना जाहिर है कि दुनिया में इंसान को जितनी तकलीफ़ पहुँचती है वो आखिरत में गुनाहों की माफ़ी और रफ़े दराजात दराजात की बुलंदी का ज़रिया है, तो इसलिए दुनिया की परेशानी की वजह से मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए। हाँ एक इस्तिस्ना है, इंसान को यह अंदेशा हो कि इन परेशानियों में कहीं मेरा ईमान ख़तरे में ना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हिफाजत की दुआ करें और ये दुआ मांगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुआ मांगनी ही है तो इस तरह मांग लें कि अल्लाहुम्मा अहयिनी, ए अल्लाह मुझे ज़िंदा रख जब तक ज़िंदगी तू जानता है कि मेरे लिए बेहतर है, और जब मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर ना हो, मेरे लिए मरना बेहतर हो, तो उस वक्त मुझे मौत दे देना, ये दुआ मांग लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है। दुनिया वैसे ज़ाहिर है तकलीफ़ ही की जगह है, कुरान ने बार बार बताया इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, दुनिया मुशक्क़त ही की जगह है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम तकलीफ़ों से ही गुजरते रहे, तकलीफ़ों से ही गुजरते रहे, यही صلحاء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دنیا میں ہوتا ہی ہے تاکہ آخرت کے درجات ان کو ملے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ. جیسے احزاب کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں, کتنی مشکلات سے گزر رہے تھے, حالانکہ سید الانبیاء تھے, بڑے بادشاہ کی طرح وقت گزارتے, اس سے بڑھ کر وقت گزارتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفیں آخرت کے رفع درجات اور بلند درجات کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اس کو انسان کوشش کرے, دل کو خوش کرے کہ یا اللہ یہ آپ نے مجھے کوئی اچھائی دینے کے لیے یہ مشکل وقت مجھے دیا ہے, تو یا اللہ مجھے اس پر صبر بھی عطا فرما دے اور ان مشکلات کو آسان فرما دے. دنیا کا اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے, مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے, ختم سب ہو جاتے ہیں. بڑے سے بڑے مالدار لوگ بہت مزے جب کر رہے ہوتے ہیں وہ وقت بھی گزر جاتا ہے, اور جو لوگ بیچارے مظلوم ہوتے ہیں وہ بھی وہاں سے گزر جاتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے, آگے دیکھنا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے, سوال یہ ہے کہ آج کل کپڑے تقریباً کچھ حد تک سی تھرو ہی ہوتے ہیں. کپڑوں کے بارے میں یہ ہے کہ جب کپڑے پہنے جاتے ہیں تو پہننے کے بعد کیا دیکھنے سے ستر نظر آتا ہے, جسم کی حیات نظر آتی ہے؟ بعض وہ کپڑے ہوں گے کہ نہیں نظر آتا, بعض رہتے ہیں کہ بہت غور سے دیکھیں تو شاید کچھ نظر آئے, اور لوگ عام طور سے جو جن کے پاس ہم پہن رہے ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے, اور اگر بہت ہی باریک ہیں کہ ہلکی سی نظر سے نظر آ جائے پھر ناجائز ہوگا. نماز میں تین آیات یا پھر کتنی مقدار کی تلاوت کرنی چاہیے؟ تین چھوٹی آیتوں کے بقدر کم از کم انسان پڑھے, ورنہ تو ظاہر ہے جو مسنون قرآت ہے وہ مختلف ہے کہ فجر میں کون سی صورتیں اور عصر میں کون سی صورتیں, عشاء میں کون سی صورتیں, لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ کم از کم تین چھوٹی آیتوں جتنی مقدار پڑھ لے, تین آیتیں ضروری نہیں لیکن اتنی مقدار پڑھ لے, جس کو فقہا نے تقریباً 30 حروف کے ساتھ اندازہ لگایا کہ 30 حروف جتنی مقدار ہوگی تو تین آیتوں جتنا ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے کہ فرض نماز میں صورتیں ترتیب سے پڑھنا یا دو صورتیں چھوڑ کر پڑھنا, اس کی کوئی روایت ہے؟ جیسے سورہ فیل کے بعد سورہ قریش پڑھی جاتی ہے یا سورہ کوثر. فرض نماز کے میں صورتیں ترتیب سے پڑھنا, یہ تو یعنی یہ مسئلہ بھی, اور اسی طرح درمیان میں کسی صورت کو, ایک صورت جو چھوٹی صورت ہو اس کو چھوڑ دینا, یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ صراحتاً مجھے کسی حدیث میں دیکھنا مجھے یاد نہیں ہے. یہ فقہا کا استنباط ہے کہ ترتیب وار پڑھنا, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ترتیب سے پڑھنے کا ہوتا تھا. شروع دور میں قرآن کا نزول جب ہو رہا تھا اس وقت کے حالات مختلف تھے, بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت کے جو عام تعامل رہا وہ یہ کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ترتیب سے پڑھا جاتا ہے. اس لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ بلا ترتیب پڑھنا, پہلی رکعت میں ایک صورت اور دوسری رکعت میں پیچھے والی کوئی صورت پڑھ لینا, یہ خلاف ترتیب ہونے کی وجہ سے خلاف اولا اور مکروہ تنزیہی اس کو قرار دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ فیل کے بعد سورہ قریش پڑھ لیں یا سورہ فیل کے بعد آگے سورہ کوثر پڑھ لیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ کہ درمیان میں کوئی چھوٹی صورت چھوڑنا ایسا ہے جیسا کہ اس کو اس کی طرف بے توجہ ہی کر دی, اس کو نظر انداز کر دیا, کہ مثلاً سورہ فیل پڑھی اس کے بعد پھر سورہ قریش پڑھنے کے بجائے سورہ معون پڑھ لی, ارایت الذی یکذب بالدین, تو قریش کو کیوں چھوڑا؟ حالانکہ اس صورت کا پیچھے والی صورت کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو ایک چھوٹی صورت کو چھوڑ دینے کو فقہا اس لیے خلاف اولا کہتے ہیں کہ اس طرح کے اس سے نظر انداز کرنا ہے, بڑی صورت ہو تو پھر اس میں وہ بات نہیں پائی جاتی. یہ فقہا کا استدلال ہے. اچھا, ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ایک اور سوال ہے, اگر بچوں کو دینی شوق کی وجہ سے میلاد میں لے جائیں یا وہ کمپٹیشن, असल ये है कि वो चीज़ें जो शरान पसंदीदा नहीं हैं, ऐसी चीज़ों में शिरकत से होता यह है कि एक बचपन से जहन में एक बात बैठ जाती है, इससे कि जो चीज़ें सिखाते हैं उसमें सिखाने में अमल को ज़्यादा दखल होता है और कहने को कम दखल होता है। बच्चों के मिजाज जो होता है ना, वो देख कर सीखते हैं। अगर बचपन से वो इस तरह की चीज़ों में जाने लगें जहाँ मीलाद वग़ैरह होती है, एक तो होता है कि मीलाद के माना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वग़ैरह का तज़किरा, नात और इस तरह की चीज़ें हैं, और बग़ैर किसी फ़िक्स तारीख़ के कोई हर्ज की बात नहीं, तारीख़ भी फ़िक्स नहीं है। और वैसे ही एक होता है कि नहीं, हमें इसी तारीख़ में करना है और यही है, और वो भी वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं जो शरी लिहाज से पसंदीदा नहीं है। बात सीधा होती हैं कि इसमें बाज़ वो बातें होती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुनासिब नहीं हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो बातें, इसलिए कि मीलाद में हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर मीलाद के माना ये हैं कि सही सही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सही बातें हैं वो की जा रही हैं, सीरत का तस्करा है, तारीख़ की पाबंदी नहीं है, तो इस तरह उसमें तो कोई हैरत नहीं। ज़ाहिर है, तो हमारे लिए एक एज़ाज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके तस्करा, ये तो हमारे लिए एज़ाज़ है। लेकिन तारीख़ की तयन और वो माहौल और वहाँ की जो बात चीज़ें होती हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात चीज़ें वो बयान की जाती हैं कि आप तो आलिमुल गैब थे, वलियाज़ु बिल्ला, आप हाज़िर और नाज़िर हैं, ये हर जगह मौजूद हैं, बस अकीदों के लिहाज से वो बातें होती हैं। बच्चे बचपन से वो बात अगर जहन में बैठ गई तो ज़ाहिर है कि वो चीज़ें वो हैं जो आगे फिर जहन से निकालना मुश्किल होगा। ये अकीदे की बातें आ जाती हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं। इंसान वैसे ही सीरत वग़ैरह इन चीज़ों का, ज़ाहिर है कि कभी भी किसी ने इनकार नहीं किया कि मीलाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद का तस्किरा करना या सीरत की मीलाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तो हुई है, वो मीलाद है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, विलादत, आपके हालात, ये सब तस्किरा तो हम सब के लिए बायत शहादत है, इसमें कोई इश्काल की बात नहीं। कोई ख़ास दुआ गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अहादीस में उसके तरीक़े आते हैं। वैसे तो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ लें सुकून से, जब गुस्सा आए तो सुकून से बैठें, आगे बढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें, हरकत ना करें, गुस्सा आया बिल्कुल खामोश, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तावुज़ पढ़ लें, उससे फ़र्क पड़ेगा, चूँकि हदीस का इलाज है, फ़र्क पड़ेगा। खड़ा है, बैठ जाए और वुज़ू भी कर ले तो फ़ायदा मंद है। पानी शैतानी असर को, वुज़ू पानी शैतानी असर को दूर करता है, तो वुज़ू करना भी फ़ायदा मंद है। और इंसान हरकत आगे तो बिल्कुल ना बढ़े, जहाँ है उससे पीछे हट जाए, हदीस में खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, ये फ़ायदा मंद है। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, इंशाअल्लाह गुस्सा ठीक हो जाएगा। और फिर अपने आप को ये समझाए कि ये जिसने मेरे साथ ये मामला किया है, अगर अल्लाह ताला का हुक्म न होता तो ये न कर सकता, और ये भी मिन जानिबिल्लाह मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए मुझे जो तकलीफ़ पहुंची है इससे मेरा कोई गुनाह माफ़ हुआ, मेरा दर्जा बुलंद हुआ है, तो अल्लाह ताला की तरफ़ से आखिरत में तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस तरीके से अपने आप को समझा रहे। सवाल ये है कि जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कादियानी मसलक का है, तो क्या हमें डॉक्टर बदलना चाहिए? हाँ, बदल लेना चाहिए। जब तक दूसरे डॉक्टर का इंतज़ाम नहीं होता अलग बात है, वरना डॉक्टर बदल लेना चाहिए। कादियानियों के साथ ताल्लुक़ रखना, मामला रखना, ये हमारे दीनी हमीयत के ख़िलाफ़ है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक काने को, ग़ुलाम अहमद कादियानी को कहता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है, वलियाज़ु बिल्ला, वो इतना झूठा शख्स था कादियानी, और उसके बारे में ये कहता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नई शक्ल में आए हैं, वलियाज़ु बिल्ला, और इसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को ख़त्म कर दिया है। और फिर अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम कुरान को ही मानते हैं, हदीस को ही मानते हैं, और फिर जो जब ईमान की बात आती है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को उसको मानते हैं, तो ज़ाहिर है कि हमारी दीनी गैरत के ख़िलाफ़ है कि हम ऐसे के साथ ताल्लुकात रखें और हमारे ज़रिए से उनको कोई नफ़ा पहुँचे, तो इसलिए ऐसा इन लोगों के साथ लेन देन वग़ैरह नहीं रखना चाहिए। अच्छा, सवाल यह है कि शादी का मौका है, शरीयत के तमाम अहकाम का अगर ख्याल रख रहे हैं, पर्दे वगैरह का उनके साथ, अब सवाल यह है कि शादी के मौके पर ढोल बजाना चाहते हैं और इस्तेदलाल करते हैं दफ़ बजाने वाली रिवायत से। ये तो एक पुराना मसला है, हमेशा से किताबों में लिखा हुआ है कि दफ़ और ढोल दोनों में फ़र्क है। ढोल, उसमें बजने की आवाज़ आती है, दफ़ में ऐसी आवाज़ जैसे कोई लकड़ी पर इंसान हाथ मारता है तो कैसी आवाज़ आती है, बिल्कुल बजने वाली आवाज़ नहीं होती, इसकी आवाज़ है। तो दफ़ जायज़ है बास ख़ास ख़ास मौक़ों पर, आम हालात में पसंदीदा नहीं है, दफ़ जायज़ है लेकिन ढोल जायज़ नहीं है। ये तो इत्तेफाक़ी बात है, जिसमें बजने की आवाज़ आए, दोनों तरफ से बंद होता है उसमें बजने की आवाज़ आती है वो मना है, एक तरफ से बंद होता है उसमें बजने की आवाज़ नहीं आती उसकी इजाज़त है। और अब तो होता यह है कि मशीनों और माइक सिस्टम वगैरह, उसमें वो आवाज़, यानी अगर दफ़ भी होगा तो बजने वाला बन जाएगा, तो बजना नहीं चाहिए, चाहे मशीनों से या चाहे वो किसी तरीके से, बजने की आवाज़ ना हो बस, जैसे जैसे दफ़ की आवाज़ असलन जो शरीयत में साबित है उस हद तक है तो उसकी इजाज़त है, ऐसे शादी वगैरह के मौके पर उसकी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, ये तलाक़ वाले मसाइल ज़रा नाजुक होते हैं तो उसको अभी रहने देते हैं, जल्दी मैं उसके जवाब में नहीं देता। अच्छा है कि उसको इस तरह के सवालात किसी, यानी इस आम ग्रुप पर करने के बजाय उसमें कर लें, ये या तो ईमेल से कर लें या और मैसेज वगैरह के ज़रिए से कर लें। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।